हमारे समझ में नहीं आया। मरते समय में मैया रोएगी ना, ये पूछेगी उनकी मैया उत्तराजी कैसी हैं, जिसके पेट में परीक्षित महाराज जी थे तो कृष्ण भी उनके पेट में पहुंच गए ना? ऐसी ये मैया, कृष्ण भी उनके पेट में पहुंचे हुए हैं, उनके गर्भ में, और वहां पर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया वहां अपनी दृष्टि से, और बच्चा जो मरा हुआ था उसको भी जीवन दान कर दिया। तो जिसके गर्भ में कृष्ण गए हों तो वो कैसी महिला होगी, साधारण नहीं। हमको तो ये लगता है विचार करने पर, अभी झट चमक आई मेरे दिमाग में, ये साधारण नहीं थी। इसका पहला कारण ये, हमारा बेटा मर रहा है, मरेगा भी, सांप काटेगा, मैं उसके अंदर में ऐसी चीज दूं जो संसार की याद न आए, इसलिए प्रश्न ऐसा ही पूछा जो कृष्ण की लीला कथाओं को करते करते ही उनको संसार की बातें याद करने का समय नहीं हो। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है किसी को, जो अत्यंत पावरफुल हो, शक्ति हो जिसके अंदर में, वही ऐसा कर सकता है। नहीं तो वो तो विरह में रोने लग जाएगा, तड़फने लगेगा, मोह से हो जाएगा, जो हमारा बेटा मर रहा है, मोह आ जाएगा। न बेटे को मोह हुआ, न मैया को, बेटे किसी को, और ये कृष्ण के गुणों को स्मरण करा रही है। मरते समय यदि कृष्ण की याद आए और उनकी वो लीला जो सर्वोत्तम लीला है और जिस लीला के लिए वो आए हुए हैं, और वही लीलाएं स्मरण हो रही है कृष्ण की, तो उससे पढ़कर के कौन सा भाग्यवान होगा। इसलिए मैया चालाकी से ही अपने बेटे को कृष्ण के रंग में रंग रही है, उन्हीं के स्मरण को दिला रही है। और परीक्षित महाराज जी देख रहे हैं मैया को, कहीं मोह न आ जाए, इसने कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन कर मैया को भी मोह और रोने का अवसर न आ जाए, न रो दे। इसलिए बेटे और मैया दोनों एक ही तरह के, उसी को परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से कह रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे हैं। मैया को कोई बेटा उपदेश देगा जो अपने पति से कैसा व्यवहार रखो, कैसे उसको खुश करो, ये बतलाएगा बेटा? किंतु ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जी अपने मैया को कह रहे हैं, जैसे देखो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा कब, यदि गोपियों के समान ही कृष्ण को तुम प्यार करना सीखो। ये कोई कहेगा अपने मैया, गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्यार किया, पति पड़ा रहा, पति रहे तो रहे उसे कोई मतलब नहीं, और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया, भाई पिता माता गुरुजन सबको छोड़ दिया, और छोड़ करके और उनको प्यार कर रही हैं कृष्ण को, लुक छिप करके प्यार कर रहे हैं, जो दूसरा कोई ना जाने, ये कान जो सुन रहा है ये भी दूसरे कान ना ही ये जान सके, ऐसे कृष्ण को प्यार करती हैं। जब रास हुई होगी ना और कृष्ण उनके साथ में नित्य किया होगा, तो कृष्ण जब रास समाप्त होगी तो गोपियां घर में आकर के रास का प्रसंग कही होगी, जो अपने पतियों से अपने घर के लोगों से कहा ना, ये आज कैसा रास हुआ, हम लोग कैसे कृष्ण के साथ में रास किया, ये कहा होगा। कृष्ण जब गोपियों के कपड़े लेकर के कदम्ब के ऊपर में चढ़ गए होंगे, वो कन्याएं अपने माता पिता के साथ में ये प्रसंग कहीं सुनाया होगा कि नहीं, ये सब प्रसंग जो हैं परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को कह रहे हैं। तो इससे समझो जो मरने के बाद में सुनाई जाती है या कही जाती है वह परम धार्मिक होती है, अच्छी से अच्छी धार्मिक, इसलिए टॉप की धार्मिक की बातों को परीक्षित महाराज अपनी मैया को कह रहे हैं। अब तो मैं भी, अब तुमसे इस शरीर में तुमसे हमारा मिलन अब नहीं होगा, इसलिए मैंने जो कुछ समझा है अपने जीवन में वही तुमको ये बतला रहा हूं। देखो कृष्ण से ब्रजवासी लोग कितना प्रेम करते हैं। जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य है कि कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए, यही जीवन का मूल कर्तव्य है। इस प्रेम में यदि कोई कुछ बाधक होता है या बाधाएं आती हैं तो दूध से मक्खी जैसे निकाल करके फेंक देते हैं, ऐसे उस रास्ते से उन चीजों को हटा दिया जाए कृष्ण के प्रेम में बाधा। इसलिए भागवत में पहले ही बतलाया, क्या बतलाया? गुरु न सस्या, स्वजनो न सस्या, पतिर न सस्या, दैवं न सत्या, और क्या जननी न सस्या, जा समुपेत मृत्यु, नमो चेद या समुपेत मृत्यु, गुरु न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, तुम लोगों को याद नहीं है, याद रखना चाहिए, तुम्हारे मन नहीं तो तब क्या पढ़ेगा, याद रखो सब, गुरु न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्,
पिता न
सस्यात्, जननी न सस्यात्, पति न सस्यात्, नामोचयेद यः समुपेत मृत्यु, मृत्यु आकर के खड़ी है और इस मृत्यु से किसी ने रक्षा नहीं की तो वो पिता पिता नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ये आई हुई जो मृत्यु है ये कैसे जाएगी? यदि उसको कृष्ण नाम कोई सुनाने वाला हो, मृत्यु होने के समय भगवान की कथा सुनाने वाला होता है तब उससे मृत्यु को पार किया जा सकता है। और जो ये काम नहीं कर सके, वो पति पति नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, उसे कोई भी संबंध नहीं, इसी के ऊपर में निर्भर करता है। जो भगवत भक्ति के अनुकूल है उसको हम ग्रहण करेंगे और भगवत भक्ति के प्रतिकूल होगा उसको हम, ब्रज का ऐसा कोई नहीं है जो स्वाभाविक कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं है, विशेष करके जिनका कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रीति होती है वो देखता है कि सभी लोग कृष्ण को अधिक प्यार करते हैं। जिसको कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं है वो देखता है कि कृष्ण को कोई प्रीति नहीं करता, जैसे कंस अपने समान सबको देखता है, गोपियां अपने समान सबको देखती, गोपियां बैठी हुई दोपहर में क्या कर रही हैं, कृष्ण गोचारण के लिए चले गए, उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया, विरह से संतप्त हो गई, कृष्ण चले गए किंतु उनकी उनका स्मरण नहीं गया, घर में बैठी हुई दलों के दलों मिल करके बस यही चर्चा है और कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई कार्य नहीं, बस यही है। ऐसे जो भजन करता है उसके हृदय में क्या होनी चाहिए? कोई भी काम करेगा, झाड़ू भी लगाएगा तो वो किसकी चिंता करेगा? कृष्ण की ही चिंता करेगा। जो अभी साधक है वो चिंता करेगा जो हमारा कैसे ठीक ठीक में भजन हो, भजन की चिंता रहेगी, और जो इससे ऊपर उठ गया, आसक्ति में पहुंच गया उसका क्या होगा? भजनीय के प्रति चिंता होने लगेगी, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण से कैसे बढ़ेंगे, उनसे कैसे हम सेवा कर सकेंगे, उनके प्रति धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो गोपियां सिद्ध हैं, साधक तो है नहीं, इसलिए भजन के प्रति नहीं, वहां पर सेवा के प्रति और कृष्ण का स्मरण उनको हो रहा है। प्रत्येक साधक अपना जीवन ऐसे ही गवाएगा, सब समय जो साधक है सब समय कृष्ण की चिंता, कैसे चिंता कर रहे? हम लोगों को चिंता करने के लिए मसाला का अभाव हो सकता है और उनको कोई मसाला का अभाव नहीं, जिधर दृष्टि पड़ती है उधर कृष्ण ही कृष्ण देखती है, और कृष्ण के प्यारे दिख पड़ते हैं। मयूर को देखा वृंदावनम सखी बितनोत वो बितने तकृतिम जद्दे कशी देव की सुध पदम दुर्लभ लक्ष्मी गोविंद अनुमत मयूर नित्यम प्रेक्षा दिशान अवर्तान समस्त। देखा मयूर को देखा कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, ताल पर ताल नाच रहे हैं और सब पशु जितने हैं पक्षी मौन हो करके और देख रहे हैं, आ कितना सुंदर मोर नाच रहा है और कृष्ण सुंदर कैसी बंसी बजा रहे हैं। आइए हिरणिया धन्य है, हम लोग धन्य नहीं, ये मूढ़ हैं, सब लोग उसको मूढ़ मानते हैं, मूढ़ माने विचार रहित, और ये हिरणियों का सौभाग्य देखो जो पतियों को पीछे में रख करके और आगे बढ़ करके और प्रणय की भी कृष्ण से मांग रही हैं, उनके तरफ में नजर मिला रहे हैं। हम लोग को कोई देखे, पति हमारे देखे, घर से बाहर कर देंगे, टांग तोड़ देंगे, और इनका कितना सौभाग्य जो पति कह रहे हैं, कृष्ण सार है ना, कृष्ण को अपने जीवन में सार बना लिया है, वो हमारी पत्नी बहुत अच्छी भली है क्योंकि कृष्ण को प्यार कर, इसको जितनी भी जो कुछ अनुकूलता है सहयोगिता है मैं इसको सब सब करूंगा, मैं मर करके हिरण होती और कृष्ण सेवा ऐसे ही सेवा कर। यहाँ के मेघ कैसे हैं, कृष्ण के सखा हैं, ये मेघ नहीं है, कृष्ण के ऊपर में सूर्य जब तपते हैं तो वो मेघ छत्र छाया बन करके और उनके ऊपर में पानी की बूंदे गिराते हैं। इसी तरह से ये जमुना, यमुना नदी नहीं है, ये क्या है, कृष्ण की बड़ी प्रेयसी है, ये तो अपना हृदय ही कृष्ण के चरणों में सब कुछ ढाल देती है, कमल का उपहार लेकर मानो अपना हृदय ही कृष्ण के चरणों में, जहां जहां दृष्टि जा रही है गौओं के तरफ में बछड़ों के तरफ में जा रहे हैं, बस उनकी यही देख रहे हैं, कृष्ण में उनका संसार है, देखते हैं कि सभी कृष्ण को प्राण ढाल करके उनको स्नेह कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, किंतु अपने भावों को ऐसे छिपा रहे हैं जिस सखी से ये कह रहे हैं वो सखी को भनक न लग जाए जब मैं कृष्ण को प्यार करती हूं, सभी ऐसा सोच रहे हैं, हमारे मन की बात कोई ना समझे, ये सखी भी ना समझे, और सखी समझती है जब उसकी बात समझती है ना, ये वाह ये भीतर में कैसा भाव रखती है ने? वो समझते हैं, देखो ये ऐसी समझ रहे हैं कि मैं नहीं जानती, किंतु ये उससे भी दो अंगुल वो डाल डाल पर तो ये पात पात पर हैं, ऐसे उनका प्यार है। जमुना की बात कहने लगी तो थोड़ा सा वो व्यक्त हो गया भाव, अपना भाव क्या, हम भी तो ऐसा ही चाहती हैं। अब सखी ने कहा जी देखो तो अपने मन की बात इसने कह दी, अपना हृदय सर्वस्व उनके चरणों में, इनके अंदर में भंवर नहीं है, भंवर होता है ना वो ढूंढना और आदमी उसमें पड़ जाए तो डुबा देती है, नौका को भी डुबा देती है, ये भंवर नहीं उसका, ये मनोभाव है माने प्रेम काम है, इसलिए उसकी धारा रुद्ध हो गई और नीचे की धारा नीचे नहीं जा रही, ऊपर की धारा आ रही है और वो गोलाकार घूम रही है, इसका हृदय भग्न हो गया। कैसे भग्न हो गया, कृष्ण को पाने के लिए इतना प्रेम है, जब भग्न हो गया तो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए गई तो कृष्ण ने कुछ नहीं किया, तब वो झट उनके चरणों में लज्जित होकर के कमलों के उपहार देने लग गई, फिर उसको छिपाया, छिपाते किंतु अब छिपेगा नहीं, अब वो और प्रकट होकर के निकला, उसी को ये बतला रहे हैं। और परीक्षित महाराज लज्जा होने पर भी नहीं कह रहे हैं, लज्जा होने पर भी इस चीज को कह रहे हैं, उनको लज्जा नहीं, क्यों लज्जा करके क्या होगा, मैया तो मैं तो जाऊंगा चलाऊंगा और फिर भेंट नहीं इसे होगी, क्यों ना अपने हृदय की जितनी भी प्रेम की सबसे उन्नत और सार बात है मैया को कह दूं, यदि इसी से इसका ये यदि हो जाए कृष्ण के प्रति अनुराग, इसलिए उसको कह रही हैं, पूर्णा पुलिंद्य उरुगाज पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरणुज तृणरूषितेन लेप्यन्ते आनन कुचौश्च हौस्तधागिन। पूर्णा गोपियां कह रही हैं, ये जो पुलिंदियां हैं कोल भील संथाल नीच जातियां, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं
आदिवासी
भी कहते हैं, द्रविड़ द्राविड़ इत्यादि कोल भील संथाल, वो जंगलों में रहते हैं, कपड़े भी वैसा पहनना नहीं जानते, वैसा कोई सभ्य नहीं माने जाते। ये इनकी ये जो पुलिंद माने पुलिंद की जो लड़कियां हैं, आ इनका जीवन ही आज कृतार्थ है, पूर्ण रूप से कृतार्थ है। क्यों कृतार्थ है? हम लोगों का नहीं है जीवन कृतार्थ, किंतु इन लोगों का जीवन कृतार्थ है। इनका कृष्ण से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं, कृष्ण के चरणों से भी संबंध नहीं, कृष्ण के चरणों में लगी हुई वस्तु का केवल दर्शन किया और इतना भाव में मुग्ध होकर के उसको उठाया और अपने समस्त अंगों में देख लिया। हम लोगों का तो ऐसा नहीं, हम लोगों में भी लज्जा है, उन लोगों में लज्जा इत्यादि का भी नहीं। जब तक भगवत भक्ति में क्या तीन चीजें होती हैं, एक लज्जा और लज्जा भय घृणा, तीन थाकते नौ, लज्जा घृणा भय तीन थाकते नौ, ये बंगाली प्रभाव है। जब तक भय है, ओ कृष्ण का भजन करेंगे लोग क्या कहेंगे, भय लज्जा और घृणा, गले में तुलसी माला लगाने में लोगों को घृणा होती है, क्या लकड़ी सूखी हुई बांधते, कहीं सोना इत्यादि होता तो ये तिलक लगाने में लज्जा मालूम होगी, और ये लोग कहेंगे क्या ये सब पागल हो गए हैं, भगवान का भजन कहाँ, वकालत करते वहां कोर्ट में जाकर के शान से रहते और ऐसे हाथ कर देते, पॉकेट में कोई रख देता और कितना आनंद होता। तो ये ना करके क्या ये बाबा जी जैसा ये सब कर रहे हैं भजन, तो ये रहेगा तब तक भजन नहीं होगा। तीन थाकते न लज्जा घृणा भय, ये सब को छूट जाता है। आज परीक्षित महाराज जी को तनिक भी लज्जा नहीं आ रही अपनी मैया को वो बात कहने में, जो तुम कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण के क्या लगते हैं, क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे एक तरह से, तो ससुर को कोई मानेगा ऐसा प्रियतम जैसा, ये तो बात ठीक नहीं है। किंतु यही की उपदेश है, कृष्ण किसी के ससुर और ये जागतिक नहीं है, कृष्ण सबके वही है, वो मदन मोहन है सबके, सबके आराध्य हैं। तो आज इनका पूर्णा पुलिंद, ये पुलिंदी जो कन्याएं हैं, कौन सी, जो गोवर्धन की तराई में रहती हैं, नगर से बाहर में रहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं, किस लिए आई हैं जंगल में, सूखी हुई लकड़ियों को चुनने के लिए, और लेकर के तब उनके घर में रसोई बनेगी। अब लड़कियां ये कितनी बड़ी हो गई हैं, पौगंड उम्र में उपस्थित होकर के अब वय संधि में पहुंच रही हैं, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई, प्रेम समझने लगी है, अब थोड़ा थोड़ा गई वन में, उरुगाय पदाब्जर आग, उरुगाय उरुगाय किसको कहते हैं, उरु ब्रह्मा शंकरेन गाय, माने वो शंकर जी और ब्रह्मा जी जिनका गुण जस वर्णन करते हैं उनको कहते हैं उरुगाय, जिनके बड़े बड़े पैर हैं जैसे वामन देव, ये उरुगाय। वेदों में जिनका वर्णन उत्तम से उत्तम श्लोकों में वर्णन किया जाता है और बार बार सर्वत्र वेदों में उपनिषदों में सर्वत्र उनका गान किया जाता है, जिसको सुन करके मनुष्य भव सागर से त्राण पा जाता है, उसको कहते हैं उरुगाय। बहुत से अर्थ हैं उरुगाय के, किंतु गोपियां कहती हैं हमारे ये जो कृष्ण नंद नंदन हैं ये कौन है उरुगाय, वो उरुगाय नहीं है। उरुगायति इति उरुगाय, बड़े सुंदर रूप से पंचम स्वर में सप्तम स्वर में गान करते हैं और बंसी की तान छेड़ने वाले हैं, बंसी पर गान करते हैं। उरु गायत माने बंसी के द्वारा, उरु माने बहुत सुंदर से सुंदर गान करते हैं। ऐसा गान करते हैं विश्व ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, कीट पतंग नहीं है जो मुग्ध न हो जाए। केवल वही मुग्ध नहीं होंगे जो कृष्ण के प्रति प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं। उनको बंसी की सुन करके ध्वनि, कंस क्या होगा, मुग्ध हो जाएगा कि नहीं, वो और बिगड़ जाएगा, उसका क्रोध का उद्रेक होगा। जैसे अभी हवा चलती है ना, पंखा छोड़ दें तो क्या होगा, हवा चलने से ठंड लगेगी ना। गर्मी के दिनों में जब खूब गर्मी है तो हवा खोलो तो कैसे लगेगी, गर्म लगेगी। एक मशीन है मान लो कि वो ठंडी देती है, और एक वही बिजली से ही मशीन चलती है वो गर्मी देती है, और बिजली को छू दो तो क्या होगा, सुख की वस्तु वो उल्टी हो गई। एक ही वस्तु विभिन्न तरह से होती है। तो कृष्ण तो ठीक है, किंतु जिनका जिनके प्रति भाव होता है जैसा वैसे ही कृष्ण उनको देखते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ हमारे जो कृष्ण हैं वो गाय बड़े मधुर रूप में गान करते हैं, बंसी में गान करते हैं, हिरणे गौएं सभी बंसी को सुन करके पागल हो जाते हैं। और ये कैसे हैं, उरु गाय, उरु गाय माने, उरु माने होता है बड़ा, किंतु बड़े सुंदर यहां पर अर्थ होगा। उनका गाय कैसा है, कृष्ण के अंग कैसे हैं, बड़े ही सुंदर, मधुर कोमल। इसलिए ये उरु गाय पदाब जराग, पदाब जराग, पद अब्ज राग, उनके चरण कमलों में जो राग है, यहाँ पर राग माने अनुरंजन से राग, जो रंग है, क्या रंग है, कृष्ण के चरण तो ऐसे ही लाल हैं, और उनमें लग गया और राग, वो राग क्या, कुमकुम, श्री कुमकुमेन, कुमकुम नहीं श्री कुमकुम, कुमकुम माने होता है कुमकुम, कश्मीरी कुमकुम होता है। वो कांति को बढ़ाता है, उसमें स्निग्धता होती है, कुमकुम स्निग्धता होती है, उस पर हाथ यहां पर किसी चीज को लगाना हाथ छलक जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, चीज कोमल मालूम पड़ेगी, जिस चीज में वो लगेगी उसको भी मालूम होगा ये कोमल है। उसमें कुछ रंग तो लाल होता ही है, साथ साथ में उसमें सौरभ भी होता है, सुगंध होती है। तो अभी अभी श्री नहीं हुआ, श्री कब होगा, जब श्री से उसका संपर्क होगा तो श्री कुमकुमेन। श्री कौन, लक्ष्मी जी श्री हैं, किंतु लक्ष्मी जी की भी जो श्री की श्री हैं वो गोपियां हैं, और लक्ष्मी सहस्त्र शत सेव्यमान, कौन सेवनीय कौन है, श्रीमती जी हैं, राधिका जी, उस श्री से यदि संबंधित है तो श्री कुमकुमेन वो कृष्ण के चरणों में लग करके उसको लाल स्निग्ध सुगंधित सब कुछ गाते हैं, तब ये श्री कुमकुम। कौन देख रहा है, परीक्षित जब यहां देख रहे हैं, इधर में सुखदेव गोस्वामी भी देख रहे हैं, परीक्षित महाराज यही देख करके उनको कह रहे हैं, और उधर में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, तो श्री कुमकुमेन वो श्री कुमकुम कैसे हुआ, राधा जी के संपर्क से, उसमें भी दैता, दैता माने प्राणों में से में सबसे अधिक प्रिय हो उसको यहाँ पर दैता कहा गया, सबसे अधिक जो प्यारे कृष्ण को जो पूर्व गाय हैं उनकी सबसे अधिक जो प्रिया हैं वो श्रीमती राधिका जी, श्रीमती राधिका जी का वो कुमकुम है। ये नहीं बतलाया लज्जा से सुखदेव गोस्वामी जी कैसे वो वहाँ पर पहुँच गया, इसको लज्जे से कुछ छुपा दिया। छुपा किस लिए दिया, जो रसिक व्यक्ति लोग हैं समझने वाले वो समझ जाएंगे जे कैसे, इसलिए बतलाने की जरूरत नहीं है, वो हृदय में समझ लिया जे कैसे ये राधा जी का कुमकुम और कृष्ण के चरणों में कैसे लिप्त हो गया। श्री कुमकुम दैस्ता, इसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने खोला, स्तन मंडित ही न मंडित, मंडित किसको कहते हैं, आभूषण को, आभूषण के द्वारा कोई चीज को मंडन किया जाता है, कोई प्रलेप के द्वारा मंडन किया जाता है, जैसे मंडन हुआ तिलक ले लिया कृष्ण को या राधा जी को ऐसा कर दिया, ये मंडन है। सिंदूर क्या है, ये भी मंडन है, यहाँ दे दिया। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह सबसे बड़ा मंडन है। इसी तरह से हार है, अलंकार है, अंगद है। अंगद बने क्या, कृष्ण को प्रेम देने वाला जो, देने वाला जो है द, वो अंगद। ऐसे सब अलंकार हैं जो कि ये मंडिते न अंग की शोभा को और बढ़ा देते हैं। तन मंडित मंडिते न राधा जी के अंगों में वो कुमकुम है, इसलिए लगाती हैं स्त्रियाँ। पहले आजकल तो ये सब रिवाज खत्म, पहले ये सब था, पहले ये सब लिपस्टिक फिपस्टिक ये सब का प्रयोग नहीं था। स्वाभाविक रूप में इतना अंग में ही लावण्य होता था, घी दूध खाते थे लोग, ब्रह्मचर्य से रहते थे लोग, संयममय जीवन होता था, अपने आप कांति फूट उठती थी, जैसे मोती में कांति होती है ऐसे शरीर में लोगों की कांति होती है, होती थी। तो उस पर भी अब ये कुमकुम द्वारा मंडित कृष्ण से, अब ये नहीं बतला जे कैसे गया कृष्ण के चरण में, वहां तक कैसे पहुंचा, किंतु किसी प्रकार से कृष्ण के चरणों में पहुंच गया। तत्दर्शन, अब वो क्या हुआ, तृण रुषि तेना कृष्ण को के चरणों में गया। कृष्ण जी सवेरे सवेरे लौट रहे हैं घर में, यदि कहो जो गोचारण के लिए गए और वो तृण में लग गया, यह गलत, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दिन में नहीं होगा, इसलिए ये उस समय में निशांत लीला के बाद ही में कृष्ण आए और वो लग गया। लगने के बाद में ओस थी, यदि ओस नहीं होती ना तो अच्छी तरह से वो नहीं लगता, इसलिए ओस से कुछ मिल करके घासें भी रंग गई, और नहीं तो हवा में उड़ जाता, वो टिकता नहीं, इसलिए ओस के बिंदों से वो मिल करके कुमकुम घासों पर एकदम पूरे रूप से भर गया। उसको देखा किसने, पुलना पुलिंद, उसको देख करके ही पूर्ण कृतार्थ हो गई। देखते ही क्या हुआ, स्मररुज प्रेम अत्यंत अपनी पारक अवस्था में पहुंचा और उसको वो किसी प्रकार से छुपा नहीं सकी और वो कृतार्थ हो गई। उसको स्पर्श करके लिप्यंत आनंद कुचौ जहाओ, आनंद माने मुख में समस्त अंगों में उसका प्रलेप कर दिया। कहो यदि कहो ये कुमकुम तो स्त्रियों का था तो इसलिए उसका वो कैसे वो उपशम हुआ, वो तो नहीं, कृष्ण के चरणों में वो शक्ति है। वो शक्ति कहाँ से आई, कृष्ण के चरणों से, जो उनका कृष्ण से मिलने का जैसा प्रभाव होता है कुमकुम के स्पर्श से ही वो प्रभाव, और वो एकदम शांत प्रशांत हो गए। ये गोपियां भावना कर रही हैं, भावना माने जब गोपी भावना कर रही होती है सत्य संकल्प है, इसलिए ये भी सत्य होगा। परीक्षित महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, भागवत में सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, यह सत्य नहीं होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, महाभाव से भी ऊपर की अवस्था में ऐसा होगा। यही सब है। प्रेम कैसे आएगा? प्रेम इस जगत की कोई वस्तु नहीं है, ये समझो। मोह और काम इस जगत की वस्तु है, स्वाभाविक है जीवों में। यहां तक कि कुकुर, सुअर, गधे, भेड़े, मनुष्य इत्यादि में सब में ये समान रूप से है, बल्कि पशुओं में अधिक है। प्रेम इस जगत की कोई वस्तु नहीं है। ये कहां की वस्तु है? लादनी और संबित की सार, वो भाव, सार ये भाव है। वो बिना भगवत कृपा के या वैष्णव के कृपा से यदि वैसे न हो तो वह हृदय में वो चीज नहीं आता, संभव नहीं है। नहीं तो मोह को ही हम प्रेम कह लें। वो आएगा कैसे? आएगा साधु संग में ही आएगा, श्रद्धा के रूप में। पहले उसका बीज है श्रद्धा, यही श्रद्धा साधु संग में बढ़ते बढ़ते अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और भाव के बाद में ये प्रेम के रूप में आएगा। कैसे आएगा? इसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। अभी तो हरि नाम में निष्ठा हो, हरि कथा में निष्ठा हो, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और आगे चलने के बाद में अभियोग, अभिमान, प्रयास, वरण, श्रवण दशा, वर्ण दशा, अपान दशा, संपत्ति दशा, ये सब चीजें आएंगी। भक्त स्वामी सिंधु और उज्जैन निर्मल में वर्णित समस्त चीजें एक एक करके आएंगी धीरे धीरे। अभी तो लोभ हो, तब ये सब आएगा अपने आप। बिना श्रवण की दशा के ये नहीं होगा। कम से श्रवण करेंगे एक एक अंग प्रत्यंग उसके भक्ति के। पहले तभी अभी जानते ही नहीं है। औपाधिक भक्ति किसको कहते हैं, सुपाधिक भक्ति किसको कहते हैं, निरुपाधिक भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए सब अच्छी तरह से सुनने के बाद में ये सब चीजें तभी आएगा। ऐसे नहीं, ये पुलिंदियों को जो कह रहे हैं, ये पुलिंदिया भी कौन सी होंगी? साधारण नहीं होंगी। पूर्व पूर्व जन्म में कितना कोटि कोटि ये तक आराधना की होगी वो गोपाल मंत्र इत्यादि, तब ऐसा संस्कार हुआ होगा, तब वहाँ की पुलिंदियाँ हैं जिनको गोपियाँ भी बुलाती हैं। जबकि कृष्ण के साथ में पर्वत सब बैठती हैं ना, तब उस समय में उनको बुलाती हैं। हमारे हमारी राधा जी कहती है हमारी प्रतिनिधि है, यदि मैं हार जाऊंगी तो जो कुछ आपको लेना देना होगा इससे लेना। तो ये कैसी होंगी? और बेचारी लज्जित होकर के वहाँ पर बैठी रहती, समझ नहीं पाती हैं। तो कहती हैं जिसे वो इतनी सौभाग्यवान है। तो ये सब चीजें बिना श्रवण के, प्रारंभिक श्रवण नहीं किया, ऊपर वाली अभी हम लोग सुन रहे हैं। प्रारंभिक अभी भक्ति कैसे होनी चाहिए, कैसे कैसे अभिलाषा जन्मेगी, जब तक कि लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है। लोभ माने थोड़ी सी रुचि, थोड़ी सी रुचि होगी तो वही गाढ़वा लोभ होगा। और जिसको रुचि ही नहीं है, रुचि आएगी कहां से? श्रद्धा से आरंभ होगी। वही प्रारंभ में से ही श्रद्धा दो प्रकार की, एक होगी शास्त्रों के शासन के भर से, और दूसरी कैसे होगी? लोभमय, माने रुचिमय पहले होगी, रुचि थोड़ी सी आएगी। रुचि होता है लोभ से, राबड़ी खाने का पहले लोभ होगा, तब तो फिर रुचि, जब खाएगा तो रुचि आएगी उसको। वैसे ही लोभमयी हो, यही लोभमयी भक्ति में, श्रद्धा में, ये बहुत जल्दी गैलपिंग करके उन्नत होती है। और भय वाली जो श्रद्धा से होती है, भजन नहीं करने से नरक में जाना पड़ेगा। यदि दुखों को दूर करना है तो क्या करो? भगवान का भजन करो, राम राम कृष्ण कृष्ण कहो। जैसे अजामिल भव सागर को पार कर गया। भगवान का नारायण का नाम अनजान में कहने से ही वैसे ही हो जाएगा। भूत भविष्यत का जितना पाप ताप दुख ये सब बस विपत्तियां सब हरिनाम के उच्चारण करने से आभास से ही, इसको कहते हैं शास्त्र अवधारणामयी श्रद्धा। और इसे जो भक्ति होती है उतनी तीव्र नहीं होती है, जल्दी बढ़ती नहीं है, किंतु किसी किसी का ऐसा कोटि जन्मों का सौभाग्य हो, ऐसे संतों का वैष्णवों का ऐसे भागवत प्रेमी भक्तों का संग हो जाए तो वो उसको शास्त्र अवधारणामयी नहीं होकर के होगा क्या, लोभमयी श्रद्धा उत्पन्न होगी। और बड़ी तीव्र गति से ये बीच में बाधा बाधा कुछ नहीं मानती है, जैसे बाढ़ आती है पेड़ों को उखाड़ लेती है, रास्ता को भी कुरास्ता है उस रास्ता को भी तोड़ लड़ कर से सीधा एकदम जो कुछ है जैसे चलेगी सीधा चलती है बाढ़। अभी तो नदी का पानी संयमित रूप में चल रहा है यमुना जी का, और जब बाढ़ आएगा तब जहां रास्ता नहीं वहीं से रास्ता बना लेगी सीधा, वो तिरछा नहीं घूमेगा बाढ़ का पानी, एकदम सीधा चलता है सबको डुबाता हुआ तोड़ता सबको। ऐसे ही ये रागमयी जो भक्ति है लोभमयी भक्ति वैसे चलती है, बहुत जल्दी बढ़ती है, किंतु सबके लिए संभव नहीं है। वो तो कोई कोई महासौभाग्यवान जीव है उनके लिए वो है, और दूसरी जो श्रद्धामयी साधारण जो है शास्त्र अवधारणामयी भय से जो भक्ति की जाती है, एक आदमी पिताजी का की सेवा करता है इसलिए सेवा करता है कि रुपया मिल जाएगा, पिताजी जी ने जो रखा है हम सेवा करेंगे तो मिल जाएगा, फिर पीछे देखें अभी तो रुपया तो हाथ में आने दो, और यदि रुपया मिल गया तो क्या करेगा, नहीं सेवा करेगा। दूसरा है हमारे पिता हैं हमारा कर्तव्य है इसलिए करता है, और तीसरा है पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं ये भी प्यार करता है इसलिए पिता का कोई भी दुख देकर के ये नहीं मानता, स्वाभाविक रीति से उनके प्रति उसका प्रेम है, पैसे के लिए नहीं निस्वार्थ रूप में वो करता है। ऐसे ही जिनका ऐसा ही रागमय लोभमय जिनकी श्रद्धा है वो बहुत जल्दी से उन्नत करके एकदम पहुंच जाता है, कहां रुचि से आरंभ होता है कि आसक्ति से ही आरंभ होता है, उसके लिए पुनः पुनः साधु संग और ये और जो अंग हैं अनर्थ निवृत्ति इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, और अनर्थ एक तरह से रहता ही नहीं है उसमें, उनको अनर्थ करने का कोई सुयोग नहीं रहता। ये गोपियां जो स्वाभाविक रूप में कृष्ण की ऐसी जो चिंता कर रही हैं ये किस अवस्था में है, कहां महाभाव की स्थिति में, वो साधारण साधक नहीं है। अब यदि ऐसा ही कोई भजन करना चाहता है तो इन लीला कथाओं को प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में सब करें। अब सनातन गोस्वामी जी की टीका बतला रहे हैं। यहाँ पर त्रिणी से केवल त्रिणी मत समझो, शिला में भी लग सकती है वो कुमकुम कृष्ण के चरणों की, जहां जहां वो चल रहे हैं जहां जहां पर उसके साथ में संबंध है वहां पर वो लग जाएगा। इसलिए जिन पत्थरों पर जिन घासों पर कृष्ण के चरण कमलों से उनका कुमकुम लग रहा है श्री कुमकुम, वो कैसे सौभाग्यवान होंगे ये भी देखो, उनका जीवन कैसा होगा ये तो पुलिंदी का कहा किंतु उनका तो नहीं कहा, जिन घासों पर लग गया होगा जिन लताओं में लगा होगा जिन पत्थरों में लगा होगा उनका कैसा सौभाग्य होगा। इसलिए त्रिण तो उपलक्षण में कहा, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कहते हैं कि जिनमें इस संसार में इस प्रकार की कृष्ण की सेवा की वासना जिनके हृदय में नहीं है वो सब कैसे हैं? अकृतार्थ हैं, पूर्ण नहीं, अपूर्ण है सब। और जिनकी ऐसी लालसा है वही उन्हीं का जीवन एकमात्र पूर्ण है। इसलिए पुलिंद जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनका जीवन कृतार्थ है। हमारा जीवन ऐसा नहीं, वो उस समय भूल जाती हैं कि हमारा ही कुमकुम है, कृष्ण के चरण में लगा, ये भूल जाती हैं। इसलिए इस जगत में उन लोगों का जीवन अपूर्ण और शून्य है यदि कृष्ण भक्ति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी यदि मान लिया कि एक जीव कोई है और भजन कर रहा है, तो मरने के बाद में उसकी क्या स्थिति होगी? वो सबको भजन की सामग्री को लेकर के जाएगा, संस्कार को लेकर के जाएगा। और जिनके पास में वो नहीं है, कोई भी धन संपत्ति संसार का जो संग्रह किया वो साथ लेकर के उसका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि उसका संस्कार लेकर के जाएगा नरकों में, इधर उधर संसार में भटकेगा। इसलिए जीवन उसी का कृतार्थ है जिसको इस जीवन में भक्ति, और वो भी गोपियों जैसी भक्ति जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, उनको श्रवण करने का सुयोग हो और ऐसे ही भक्ति का लोभ किसी के हृदय में उत्पन्न हो। मंडितेना ये भी कहा, वो घासें मंडित हो रही हैं, घासें और घासों के समान हैं, घासें और पत्थर वो भी मंडित हो रहा है। अच्छा, वो पुलिंद कन्या भी मंडित हो रही, आज जिनका ये है वो कैसी होंगी? वो मंडित हो रही हैं। इसलिए वो कृष्ण की बल्लभाएं धन्य हैं, जिनके यहां से ये पूर्ण पुलिंदियां ये धन्य हो रही हैं। कहते हैं कि वो काली हैं, पुलिंद कन्या काली होती हैं, कोई सौंदर्य नहीं, कांति नहीं, किंतु जिसमें उन्होंने कुमकुम को धारण किया, अपने मुखों में लगाया, उनकी कांति कैसी बढ़ गई, कृष्ण प्रेयसी जैसी हो गई। ये कुमकुम का प्रभाव। तो जिनका ये है वो गोपियां कैसी होंगी? इसलिए कृष्ण की अत्यंत बड़ी प्रिय दैताएं हैं। कह रहे हैं कि इन बंचरी पुलिंद कन्याओं का सौभाग्य देखने से ऐसा मालूम होता है। सखियां परस्पर बात कर रही हैं कि हम लोगों से इनका सौभाग्य अधिक है। क्यों अधिक है? हम लोग उस कुमकुम को धारण नहीं कर सकती लज्जा के मारे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और ये कृष्ण का ये कुमकुम डायरेक्ट उनके चरणों से नहीं ले रही, वो कुमकुम किसी कारण से तृण में या पत्थर में लग गया, और उसको लेकर के अपने को इतना सौभाग्यवान मालूम कर रही, अपने अंगों में लिपट रही। तो कृष्ण का डायरेक्ट चरणों से यदि संबंध होता तो ना जाने इनकी क्या स्थिति होती। जैसे कृष्ण उदुखुल को लेकर के जा रहे हैं, दो वृक्ष हैं जमला के, भीतर से चले गए, कृष्ण से उन दोनों पेड़ों का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, वो उस पार चले गए, और इधर में ओखल है, ओखल का संपर्क कृष्ण से रस्सी के द्वारा है, और ओखल से पेड़ों का संपर्क हुआ और उखड़ करके उनकी मुक्ति हो गई। कृष्ण के चरणों से नहीं हुआ, न कृष्ण के अंगों से उनका स्पर्श नहीं हुआ, और तब उनका ऐसी इनकी स्थिति हो गई जब वो उनको क्या मिला, कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति हुई। मुक्ति की तो बात छोड़ दो, मुक्ति तो अनायास ही, यदि भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो मुक्ति तो अनायास ही हो जाती है। इसलिए कहा मुक्ति हो और ना हो हमको जरूरत नहीं है, प्रेम भाजन कर दिया उनको। कैसा प्रेम भाव? गोलोक वृंदावन में उनका जन्म दे करके, और वहां पर उनके ये बंदी बन गए, बंदी मैंने स्तौ स्तुति करने वाले बन गए, उनकी कथाओं को सुनाने वाले बन गए, प्रतिदिन ऐसे प्रिय हो गए, मधुकंठ और स्निग्ध कंठ बन गए। तो ये पुलिंदी कन्याएं ये उनसे अधिक है या कम है? मैं तो समझता कि उनसे भी अधिक है। वह कुमकुम जो दूसरों के लिए दुर्लभ वस्तु है, उनको सहज ही रूप में उन्होंने प्राप्त कर लिया, कोई लज्जा संकोच नहीं। कहते हमको तो लज्जा होती। इसलिए ब्रह्मचारी पुलिंदी गण की सौभाग्य को देखने से ऐसा ही मालूम होता है कि हमारे से हमसे भी अधिक सौभाग्यवती हैं। हम लोग सुन रहे हैं, ऐसी लालसा कर सकेंगे? संभव पर नहीं। हम कहेंगे जैसे चलो हमारे साथ में अभी सभी लोग कीर्तन करते हुए चलेंगे और सभी लोग हाथ उठा करके कीर्तन करेंगे और नृत्य करते हुए चलेंगे, तो इसमें से कितने आदमी हमारे साथ में चलेंगे? ब्रह्मचारी लोग तो चले जा सकते। और सब लोग कहें जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई लज्जा होगी, कोई कुछ होगा, और वो सब के लिए देखो तो तब तो कितना लज्जा। इसलिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवत में ऐसा बतलाया गया है, महापुरुष लोग कैसे होते हैं? एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागोदित चित्त उच्चै हसत अथो रोदति रौति गायत उन्मादयत नित्य लोक वाद्य। लोक वाद्य, लोक की अपेक्षा नहीं रहती, कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, लोक वाद्य होकर के नित्यति नित्य हैं, कभी भूल लुंठन करते हैं, जमीन पर लौटते पोड़ते हैं, गड़ागड़ी दीते हैं और भावमत हो जाते हैं, कभी रोते हैं।